कर्म और जीवन। विश्व के जीवन, प्रकाश और आनंद ईश्वर ही है। सूरज की प्रभापूर्ण किरणों की तरह, सोते से फूटती हुई अजस्त्र धारा की तरह, ईश्वर के वरदान सभी प्राणियों के समक्ष आबाद गति से प्रवाहित होते हैं। जहां भी मनुष्य के हृदय में ईश्वर के जीवन का निवास होगा, ये प्रेम और आशीष के साथ एक हृदय से दूसरे हृदय में सदा प्रवाहित होता रहेगा। पतित मनुष्यों के उद्धार और मुक्ति में ही हमारे त्राता को आनंद मिलता था। इस महान कार्य में उन्होंने अपने जीवन तक को तुच्छ समझा और उसकी वेदना सहली तथा लज्जा उठाई। उसी प्रकार दूसरों की भलाई करने में स्वर्गदूत गण सदा सचेष्ट हैं, इसी में उनका आनंद है। प्रकृति और पद में निकृष्ट लोगों की सेवा करना तथा उन्हें उन्नत बनाना ऐसा कार्य है जिसे अन्य स्वार्थी लोग तो नीच और मर्यादा के विरुद्ध समझें, किंतु इसे ही निष्पाप दूतगण आनंद से करते हैं। यीशु के निस्वार्थ प्रेम की भावना ऐसी अमृतमयी भावना है जो स्वर्ग को व्याप्त है और स्वर्गीय आनंद का मूल तत्व है। यही भावना यीशु के सच्चे अनुयायियों में भी रहेगी और उनके कार्य में व्यक्त होगी। यीशु का प्रेम हृदय में प्रतिष्ठित हो जाने पर सुगंध की तरह छीप नहीं सकता। इसका पवित्र भाव उन लोगों पर पड़ेगा जिनसे हम संबंध रखेंगे। मरुभूमि के झरने की तरह यीशु का प्रेम है, जो सर्वों की तृष्णा मिटाने, जीवन देने तथा नवीन शक्ति भर देने को बहता रहता है। जिसे यीशु से सच्चा अनुराग होगा, सदा यही इच्छा करेगा कि उन्हीं की तरह कार्य करे, उन्हीं की तरह मानव मात्र के उत्थान और उद्धार के लिए चेष्टा करे। इस प्रेम से सारी सृष्टि के समस्त प्राणियों के लिए प्रेम, करुणा और ममत्व हो उठेगा। मुक्तिदाता का जीवन आराम का जीवन न था। संसार में वे अपने बारे ही चिंतित होने और आत्म प्रेम में ही रत होने नहीं आए थे। उन्होंने तो पथभ्रष्ट मानव समाज के उद्धार के लिए अथक परिश्रम किया, अदम्य उत्साह दिखाया और अद्वितीय अध्यवसाय का उदाहरण छोड़ा। चरनी से लेकर कालवरी तक उन्होंने आत्मावज्ञा का मार्ग ग्रहण किया। जीवन पर्यंत उन्होंने कड़ी यातनाओं, कष्टदायक यात्राओं तथा क्लांतिदायक चिंता और परिश्रम से पीछा नहीं छुड़ाया और न उनसे पीछा छुड़ाने की कभी चेष्टा भी की। उन्होंने कहा था, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मत्ती 20 आयत 68। यही उनके जीवन का महान उद्देश्य था। इस महान लक्ष्य का आगे दूसरी वस्तुएं महत्व ही नहीं रखती थीं। ईश्वर के आदेश की पूर्ति और उनके कार्य का संपादन ही यीशु का भोजन और जल था। उनके परिश्रम के अंतर्गत आत्मतुष्टि और स्वार्थ को कोई स्थान नहीं था। जिन्हें क्रीस्ट के अनुग्रह का प्रकाश मिल रहा है, उन्हें किसी भी बलिदान के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। इससे वे लोग भी स्वर्गीय वरदान के भागी बन जा सकेंगे, जिन लोगों के लिए क्रीस्ट ने प्राण दिए। वे लोग संसार के सुधारने, उन्नत करने और उज्ज्वल करने की चेष्टा यथाशक्ति करेंगे। यदि हृदय में ये भावना भर जावेगी तो समझिए कि सचमुच ही आत्मा में आलोक आ गया है। जैसे ही मनुष्य क्रीस्ट के समक्ष आता है, वैसे ही उसमें ये भाव उदित होता है कि वह दूसरे लोगों को यीशु की मैत्री और अमूल्य प्रेम के बारे कहें और अपना भाग्य सराहें। ये पुनीत सत्य उसके हृदय में दबकर या छीपकर रह ही नहीं सकता। क्रीस्ट की धार्मिकता का धवल वस्त्र पहन लेने पर तथा उनके अंतरस्थल में निवास करने वाले पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाने पर हम अपनी शांति और गंभीरता के साथ बैठे नहीं रह सकते। जहां हमने ये जान लिया कि प्रभु कल्याणकारी है, तहां हमारी वाणी प्रशंसा में फूटी। फिलिप ने मुक्तिदाता को पाकर सर्वों को उनकी उपस्थिति से लाभ प्राप्त करने को आमंत्रित किया था। उसी की तरह हम भी सर्वों को निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे और आग्रह करेंगे कि सभी उनसे लाभ प्राप्त कर लें। उन लोगों को हम क्रीस्ट के मोहक गुणों को दिखलाएंगे और उस लोक के सुख और आनंद का वर्णन करेंगे और यीशु के मार्ग में चखने को हम भी सर्वों के साथ आकुल हो जावेंगे। हम में ये विकल भावना भर जाएगी कि हम सभी कोई उस ईश्वर के मेमने को देखें जो जगत का पाप हर ले जाता है।
दूसरों की भलाई के निमित्त जो कार्य हम करेंगे, वही कार्य हमारी भी भलाई का कारण बनेगा। ईश्वर ने जो हमें मुक्ति की योजना में कुछ कार्य सौंपे तो उसका यही प्रयोजन था। उन्होंने मनुष्यों को ईश्वरीय प्रकृति के भागी होने का विशेष अधिकार दिया है और फिर मंगलमय आशीर्वाद को दूसरों पर वितरण करने का भी अधिकार दिया है। यही है सबसे गौरवपूर्ण सम्मान और सबसे महिमामय आनंद हो ईश्वर मनुष्यों के प्रति दे सकता है। जो भी इस प्रेम सने कार्य में हृदय से लग जाते हैं, वे ख्रीस्ट के सबसे निकट पहुंच जाते हैं। यदि चाहता तो ईश्वर अपने धार्मिक संदेश के वितरण तथा सारे प्रेमपूर्ण कार्यों के संपादन का भार स्वर्गीय दूतों पर सौंप देता। अपने प्रयोजन के लिए वह कुछ दूसरे उपाय भी काम में ला सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसका प्यार इतना गहरा है कि उसने हम ही लोगों को अपने साथ काम करने के लिए चुना। उसने अपने साथ ख्रीस्ट के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, अर्थात सभी कल्याणकारी ईश्वरीय विभूतियों के साथ काम करने के लिए हम मनुष्यों को चुनकर लगाया। इसमें ईश्वर का उद्देश्य यही था कि ईश्वरीय विभूतियों के सहकर्मी और सहयोगी होकर हम भी निस्वार्थ कर्म के फल अर्थात वरदान, आनंद, आत्मिक उत्थान आदि प्राप्त कर सकें। ख्रीस्ट के क्लेशों और यातनाओं के सहयोगी बनकर हम ख्रीस्ट के साथ हार्दिक संवेदना और सहानुभूति में मग्न हो जाते हैं। दूसरों के उपकार करने के प्रत्येक कार्य द्वारा उपकार करने वाले की उदारता और ईश्वरीय गुण शक्ति ग्रहण करती है और उस मुक्तिदाता के समकक्ष वह आ जाता है। धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बना कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 2 कुरिन्थियों 8:63। और जब हम ईश्वरीय विधान के इस उद्देश्य को पूर्ण करेंगे, तभी जीवन आशीषमय प्रतीत होगा। जिस तरह ख्रीस्ट ने अपने चेलों को चलने और काम करने का आदेश दिया, यदि हम वैसे ही चलें और परिश्रम में जुटे रहें तथा उनके लिए लोगों को ख्रीस्ट के पास लावें, तो हमें आत्मिक वस्तुओं के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की तथा गंभीरतम अनुभूतियों में डूब जाने की उत्कट लालसा होगी, और तभी हम पवित्रता और धार्मिक शुद्धि के पीछे प्राणों की बाजी लगाकर दौड़ेंगे। हम तब ईश्वर से अनुनय विनय करेंगे, हमारी भक्ति दृढ़ होती जाएगी और मुक्ति के कूप से हमारी आत्मा और भी नीचे बैठकर आनंदमय जल का पान करेगी। ऐसी अवस्था में यदि विरोध परीक्षाएं हुई तो हम बाहबल और प्रार्थना के सहारे विरोध को रोकेंगे और परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। हम ईश्वरीय अनुग्रह तथा विभूति में अधिक से अधिक दीप्त होंगे और यीशु के परिज्ञान में अधिक से अधिक गंभीर होंगे। हमारी अनुभूति प्रगाढ़ एवं अनूप होगी। दूसरों के उत्थान और उद्धार के लिए निस्वार्थ कर्मचरित्र को गंभीर, सुदृढ़ और ख्रीष्ट सा मधुर बनता है। इससे मनुष्य शांति और आनंद से मरे जाता है। आकांक्षाएं उन्नत हो जाती हैं। इस निष्ठा में आलस्य तथा स्वार्थ को स्थान नहीं। जो भी ईसाई अनुभव को प्राप्त करता है, वह वृद्धि और विकास पाता है तथा ईश्वर के कर्म करने में अधिक से अधिक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोगों की आध्यात्मिक प्रज्ञा और अनुभव तीव्र होते हैं और स्पष्ट होते हैं। इनकी भक्ति सदा प्रगाढ़ और विस्तृत होती है। इनकी प्रार्थना की शक्ति बलवती हो जाती है। उनकी जीवन शक्ति के बीच ईश्वर की प्रेरक शक्ति काम करती रहती है और ईश्वरीय स्पर्श आत्मा के सारे तारों को स्पंदित एवं झंकृत करती रहती है। जो कोई इस निस्वार्थ कर्म में प्रवृत्त हैं एवं दूसरों की भलाई के लिए दत्तचित्त हैं, वे निर्विवाद अपनी मुक्ति का पथ प्रशस्त कर रहे हैं।
ईश्वर के अनुग्रह और विभूति की प्राप्ति के लिए तथा इन्हें अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है, वह यह है कि हम यीशु के बतलाए हुए कार्यों में अनासक्ति के साथ लगे रहें, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप उनकी मदद और कल्याण करें जिन्हें मदद और कल्याण की आवश्यकता है। श्रम करते करते शक्ति आ जाती है
और क्रियाशीलता अथवा कर्म तो जीवन का धर्म है। जो लोग अनुग्रह के द्वारा आशीष प्राप्त कर ईसाई जीवन यापन करने का उद्योग करते हैं पर ख्रीष्ट के लिए कोई कार्य करने का उद्योग नहीं करते, वे ऐसा जीवन यापन करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसमें खाना तो मिलता है लेकिन काम करना ही नहीं पड़ता, और ऐसे जीवन का नतीजा आत्मिक और नैतिक दोनों का विनाशकारी होता है। जो मनुष्य अपने अंगों को परिचालित नहीं करता वो उन अंगों को पंगु और बेकार बना देता है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में उन अंगों पर उसका कोई बल नहीं चलेगा। उसी प्रकार जो ईसाई अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को उपयोग नहीं करता वो न केवल ख्रीष्ट में तादात्म्य प्राप्त करने में ही असफल रहता है किंतु अपनी पहले की शक्तियां भी खो बैठता है। ख्रीष्ट की मंडली वो केंद्र है जिसे ईश्वर ने मनुष्य की मुक्ति के लिए स्थापित किया है। उसका लक्ष्य और उद्देश्य सारे जगत में ईश्वरीय समाचार का प्रचार और प्रसार है, और वो काम सारे ईसाइयों के मत्थे सौंपा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार मुक्तिदाता से ख्रीष्ट का प्रेम उदित हो जाता है तो हम उन लोगों के ऋणी हो जाते हैं जो ख्रीष्ट को नहीं जानते हैं। ईश्वर ने हमें ज्योति दी है, वो ज्योति सिर्फ अपने ही लिए नहीं वरन इन अनभिज्ञ लोगों पर चमकाने के लिए भी। यदि ख्रीष्ट शिष्यगण अपने कर्तव्य में सजग रहें तो एक की जगह हजारों लोग अन्य धर्मावलंबियों के देशों में संदेश का प्रकाश फैलाते चलें। फिर तो जो लोग किसी कारणवश इस कार्य में हाथ न बता सके हैं वे अपने धनबल, संवेदना, सहानुभूति और प्रार्थना से ही इसे सहायता दे सकते हैं। और ईसाई देशों में तो मनुष्यों के उद्धार के लिए और भी शक्ति से काम होगा। यदि हमारे घर के देश में ही काम करने का क्षेत्र है तो यीशु के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अन्य धर्मावलंबियों के देशों में जाने का कोई प्रयोजन नहीं। तब तो हम अपने घर पर, मंडली में, दोस्तों के बीच, व्यापारी लोगों के साथ ये काम पूरा कर सकते हैं। हमारे मुक्तिदाता के जीवन का अधिक भाग तो नासरत के बढ़ई की दुकान पर काम करते ही बिता था। जब अज्ञात और असम्मानित रूप में जीवन के प्रभु किसानों और श्रमिकों और मजदूरों के साथ साथ बातचीत करते टहलते थे तो दूतगण उनके पास उपस्थित रहते थे। जब यीशु अपनी छोटी विनीत काम में लगे हुए थे तब भी वे अपने जीवन के उद्देश्य उतनी ही लगन से पूरा कर रहे थे जितनी लगन से वे रोगियों को आराम करने के समय अथवा गलील की अंधड़ तूफान से तरंगित लहरों पर चलते हुए पूरा कर रहे थे। अतएव हम अपने छोटे से छोटे काम में और नीच से नीच जीवन में भी यीशु के साथ साथ श्रम कर सकते हैं और उनके ऐसा बन सकते हैं। प्रेरित ने कहा है, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। 1 कुरिन्थियों 7:24। व्यापारी अपना व्यापार इस प्रकार चला सकता है कि उसकी भक्ति से उसका परमेश्वर गौरवान्वित हो उठे। यदि वो ख्रीष्ट का सच्चा शिष्य होगा तो अपने प्रत्येक कर्म में धर्म का प्रवेश कराएगा और प्रत्येक आदमी से ख्रीष्ट की आत्मा की बढ़ाई करेगा। मशीन में काम करने वाला मिस्त्री अपने स्वामी यीशु के जैसा ही उद्योगी, परिश्रमी और स्वामी भक्त होगा तथा ख्रीष्ट के गलील के पहाड़ पर के श्रम को याद कराएगा। जिस किसी ने भी ख्रीष्ट का नाम लिया है उसे इस तरह परिश्रम करना चाहिए कि उसके काम देख दूसरे भी सृष्टि और मुक्तिदाता की प्रशंसा कर उठें और उन्हें गौरवान्वित कर दें।
कितने लोगों ने अपनी शक्ति और प्रतिभा ख्रीष्ट की सेवा में खर्च न करने का यह बहाना बनाया है कि दूसरों के पास तो उनसे अधिक शक्ति और प्रतिभा है, अर्थात धारणा यह बन गई है कि जो कोई भी विशेष प्रकार से मेधावी हैं वे ही अपनी प्रतिभा ईश्वर की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। और यह भ्रांति भी आ गई है कि मेधा, शक्ति अर्थात प्रतिभा कुछ ही चुने हुए लोगों को मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती, और ये दूसरे लोगों को श्रम तथा वरदान में न तो हाथ बटाना पड़ता है और न भाग ही मिलता है। किंतु दृष्टांत में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। जब घर के स्वामी ने अपने नौकरों को बुलाया तो उसने हर एक आदमी को अपने काम बांट दिया। जीवन के नीच से नीच काम हम पूरी श्रद्धा से करें जैसे प्रभु के लिए करते हों। कुलुस्सियों 3:13। यदि ईश्वर का प्रेम हृदय में होगा तो वह जीवन के समस्त वातावरण में परिमल सुवास भर देगा
और हमारी प्रभ विष्णुता बढ़ जावेगी तथा दूसरों का मंगल करेगी। जब आप ईश्वर के कर्तव्य में संलग्न हो जाने को प्रस्तुत हैं, तो आपको किसी बड़े अवसर के लिए ठहरना नहीं चाहिए और न उसके लिए असाधारण शक्तियों की ही आशा करनी चाहिए। ऐसा विचार न कीजिए कि दुनिया आपके बारे क्या सोचेगी। यदि आपके नित्य का जीवन आपकी भक्ति की पवित्रता और निश्चयता की साक्षी देता है और दूसरे लोग यह विश्वास करते हों कि आपकी एकमात्र इच्छा उन लोगों का उपकार करना है, तो आपकी चेष्टाएं संपूर्ण रूप से विफल नहीं होंगी। यीशु के नीच से नीच और दरिद्र से दरिद्र शिष्य भी दूसरों के हित के लिए वरदान के रूप में महान बन सकते हैं। भलाई करते वक्त वे यह नहीं जान सकते कि कोई विशेष लाभ वे कर रहे हैं, किंतु अप्रत्यक्ष प्रभाव के द्वारा वे उपकार और लाभ की झड़ी लगा दे सकते हैं। इनके उपकार अनजाने ही विस्तृत और गंभीर होते जाते हैं। अपने उपकार के महान फल वे देख भी न सकेंगे। यदि कभी वे इन्हें जान सकेंगे तो अंतिम प्रतिफल के ही दिन। अपनी नम्रता और दीनता के कारण उन्हें यह ज्ञान अथवा अनुभव नहीं होता कि वे एक महान कार्य कर रहे हैं। वे अपने कार्यों की सफलता की चिंता में भी परेशान नहीं होते। उन्हें तो चुपचाप ईश्वर के कर्म सच्चाई से करते हुए आगे बढ़ चलना ही आता है। ऐसे लोगों का जीवन निरर्थक नहीं, इनकी आत्मा नित्य यीशु की समता में बढ़ती जावेगी। इस जीवन में वे ईश्वर के सहकर्मी हैं और आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उस आने वाले जीवन के कार्य महत्तर हैं और आनंद महान है। सार्थक प्रार्थना। तुम पूर्ण हुए क्लेशों में पिस, क्रूस चढ़ हो गए महान। नहीं दुखी, रोगी निपीड़ित, जिसका तुमने न किया त्रागा। निराश, पंगु, रोगी, अंधों के हेतराता। दुख सहे जितने, व्यर्थ नहीं तुम दयावान। उनको तुम कर तो परित्राण, सब हुए भले और प्रभायुक्त। जो चाह रहे स्वरोग मुक्ति, तेरे सदृश करुणा निधान। उनके चिकित्सक तुम महान, मेरे अंतर के पाप रोग का कर दो हेतराता। निदान। जीवन सुखमय कर दो मेरे, गाऊं अनंत तव यशः गान।